Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupad 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 Sri Sri Radha Vrindavan Bihari Ji Ki श्री श्री राधा बन बिहारी जी की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री वृंदावन धाम की श्री गिरि गोवर्धन की श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के 14 अक्टूबर की सवेरे की भागवतम कथा में आप सब लोग उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण स्वरूप हैं। जब कृष्ण भगवान इस विश्व की अपनी लीलाओं को समाप्त करके वापस अपने धाम लौटने जा रहे थे तो उस समय उद्धव जी उनको मिलते हैं और ये चिंता व्यक्त करते हैं कि अभी देख रहा हूं कि आप जा रहे हैं, मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना, इसलिए जहां भी आप जा रहे हैं मुझे लेकर चलना, आपके संग में रखना। तो उस समय उद्धव जी की व्यथा देखकर उसी समय श्रीमद् भागवत के रूप में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए उसी समय, और यथावकाश सुखदेव जी के मुख से उसका प्राकट्य कुछ समय बाद में हुआ। तो इसलिए श्रीमद् भागवत ये स्वयं कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना यानी स्वयं कृष्ण के साथ साक्षात संग करना। इसका प्रमाण भी दिया है कि कैसे वो स्वयं कृष्ण है श्रीमद् भागवत। जब श्री कृष्ण की पत्नियां कृष्ण के वियोग से कृष्ण के जाने के बाद रुदन कर रही थी, रो रही थी, तो जब उद्धव जी ने उनको श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया तुरंत उनका खेद जो है वो नष्ट हो गया। क्यों रो रही थी वो? कृष्ण के वियोग में रो रही थी, कृष्ण नहीं है, उनका संग नहीं मिल रहा है, इसलिए रो रही थी। और श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनते ही उनका रोना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो संग नहीं था वो तुरंत प्राप्त हो गया और आगे जाकर आनंद में ही रही। स्थिति वही है, श्री कृष्ण भगवान चले गए हैं, वियोग तो है ही उनका, लेकिन वो उसमें भी उनको श्री कृष्ण के साथ संयोग का अनुभव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि हम में से किसी को भी श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष संग चाहिए तो हमें सबको रोज श्रीमद् भागवतम श्रवण करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए। भागवत का श्रवण करना ही भागवत की सेवा है और भागवत का श्रवण ही कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात संग है। तो श्रीमद् भागवत में क्या क्या है, थोड़ा बच्चों को जरा प्लीज। तो श्रीमद् भागवत में क्या क्या है? श्रीमद् भागवत में भक्तों का चरित्र है। नवे स्कंद तक, नाइन्थ कैंटो तक विविध प्रकार के भगवान के भक्तों का और भगवान के विविध अवतारों का चरित्र वर्णन है उसके अंदर। बहुत ही सुंदर, सब लोगों को रोचक कहानियां सुनने की इच्छा होती रहती है ना। तो कुछ मिलता नहीं है तो फिर फिल्म स्टार की लव स्टोरी करते हैं, पॉलिटिशियन का अफेयर पढ़ते हैं, ये स्कैंडल पढ़ते हैं, वो स्कैंडल पढ़ते हैं। तृप्त नहीं होता हृदय, क्योंकि आत्मा की भूख जो है वो कृष्ण की लीलाओं की है। सबको हीरो चाहिए, सबको कोई वंदन करने के लिए व्यक्ति चाहिए, लेकिन जिसको जिसको फॉलो करते हैं वो अपने बुरे उदाहरण से आगे सब लोगों को परेशान कर देता है। जिसको जिसको हमने पूजा, जिसको जिसको वंदन किया, जिसको जिसको हीरो समझा, वो सब लोग एक समय पर आपको अपने चरित्र का जो हीन स्वरूप है उसका प्रदर्शन करते हैं। और हमारा जो किसी को हीरो बनाने की जरूरत है वो उसको ठेच लगती है फिर दोबारा। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे नायकों का वर्णन किया गया है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद, भीष्मदेव, कुंती महारानी, पांडव, परीक्षित महाराज, ऐसे श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ भक्तों का चरित्र का वर्णन किया है जो मनुष्य के लिए, जीव के लिए उसका श्रवण करना अति आवश्यक है। उनके चरित्र का केवल श्रवण करने मात्र से आत्मा की शुद्धि होती है, तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। हमने अगर श्रीमद् भागवत के भक्तों के चरित्र का श्रवण नहीं किया तो क्यों कान दिए भगवान ने हमको? रूप गोस्वामी कहते हैं वो कान जो श्री कृष्ण के भक्तों का और श्री कृष्ण के चरित्र का श्रवण नहीं करते हैं वो सांप के बिल की तरह है। अगर हमारे सांप के बिलों को हमको सर्वश्रेष्ठ श्रवण इंद्रिय बनाना है तो उसमें श्रीमद् भागवत का अमृत डालना होगा। इसलिए हमारे सभी मंदिरों में हर दिन 652 मंदिर है दुनिया में, पता नहीं कितने हजारों सेंटर हैं ऐसे जो मंदिर के कैटेगरी में नहीं आते, वो सब में हर रोज सवेरे नित्यम भागवत सेवया होता है। रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए। हमारे जो महात्मा गांधी है राष्ट्रपिता, वो भी कहते थे श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का नित्य श्रवण यानी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ शुद्ध जल से स्नान करने जैसा है। बुद्धि में जो भ्रष्टता है उसको स्नान स्वच्छता के लिए श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का जो वचन है, वाणी है, उसको श्रवण करना बहुत आवश्यक है और उसी से चरित्र बनता है। जब हम श्रेष्ठ चरित्र का श्रवण करते हैं आपका हमारा चरित्र बनता है, आपके हमारे चरित्र की वृद्धि होती है, हम कुछ कहने लायक बन जाते हैं जब हम इसके सुंदर चरित्र का श्रवण करते हैं। और घटिया लोगों के जीवनी और स्कैंडल के बारे में सुनेंगे तो वैसे हमारा चरित्र बनेगा, इसलिए बी केयरफुल। तो पेपर में पढ़ते हो आप, मैगजीन में चाव लगा के पढ़ते हो किसने क्या किया, मत पढ़ो उसको, क्योंकि आपका चरित्र वहां भ्रष्ट हो रहा है, आपके चरित्र में क्या कहते हैं अशुद्धि आ रही है। इसलिए भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, वो हमेशा अपने आप को भगवान के भक्तों की और भगवान की कहानी सुनने में ही मग्न रखते हैं। इसमें बड़ा स्वार्थ भी है और बड़ा परमार्थ भी छुपा हुआ है। परम कल्याण की बात है दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी। तो पहले 9 स्कंदों में सब भक्तों के चरित्र का वर्णन आता है। सुंदर सुंदर भक्त, आप कई बार भी उनकी कहानियां पढ़ेंगे ना, तभी आपको कभी लगेगा नहीं क्या वापस सुना रहे हो। स्वयं कृष्ण जो है वो जब भक्त बनकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने सैकड़ों बार ध्रुव चरित्र सुना है, सैकड़ों बार। और हम लोग सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु डांस करते हुए सुनते थे आनंद से मशहूर होकर। गदाधर पंडित जी उनको भागवत सुना रहे हैं और श्रीमद भागवतम श्रीमद चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में, तोटा गोपीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथपुरी में उसके प्रांगण में नृत्य कर रहे हैं। और कथा समाप्त होती है तो गदाधर पंडित और सुनाओ, तो वही चरित्र वापस सुना रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं दूसरा सुनाओ, ये क्यों सुना रहे हो, अभी सुनाया ना आपने, ऐसे नहीं, उसी को दोबारा सुन रहे हैं। एक एक वाक्य को, एक एक श्लोक को, एक एक श्लोक के एक एक शब्द को दोबारा सुनने में वो परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो 9 स्कंद में भगवान के प्रामाणिक परम शुद्ध भक्तों का दिव्य चरित्र सुनने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का आरंभ होता है 10 स्कंद में। प्रथम 2 स्कंद है वो श्री कृष्ण के चरण कमल की तरह माने गए। अगर आपने प्रथम 2 स्कंद पढ़ लिए तो श्री कृष्ण के चरण कमल को आपने स्पर्श किया, उनके चरणों का संग किया। उसके बाद में उनके जंघा प्रदेश, कटि प्रदेश, नाभि प्रदेश, वक्षस्थल और 10 स्कंद क्या है उनका मुखमंडल। 10 स्कंद जब आप सुन रहे हो, श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हो, साक्षात श्री कृष्ण के मुख का आप दर्शन कर रहे हो। ये सब चिंतन की बातें हैं, हाँ, ऐसे प्रवचन की बातें नहीं है। ये सब आपको करके उसमें चिंतन करना है, तब आपको ये अनुभूति होगी। श्री कृष्ण भगवान कोई ऐसे कपोल कल्पित व्यक्तिमत्व नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ये वास्तविक व्यक्तिमत्व है। उनका संग हम रोज कर सकते हैं, उनके नाम के द्वारा, उनके कथाओं के श्रवण के द्वारा। खैर, तो पहले अध्याय से कंस के राज्य का वर्णन शुरू होता है, फिर भगवान के जन्म का वर्णन होता है, फिर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होता है, फिर भगवान ब्रज की लीलाओं का वर्णन होता है। उसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, कंस का वध करते हैं, उसके बाद वहाँ से द्वारका बस आते हैं, द्वारका में लीला करते हैं, 16108 विवाह करते हैं। उसके बाद हस्तिनापुर आते हैं और कौरव पांडवों का जो भी करना है लीला, आगे महाभारत युद्ध रचाते हैं, फिर वापस द्वारका लौटते हैं, फिर अपने यदुवंश को वापस लेके जाते हैं, फिर स्वयं वृंदावन में आते हैं, फिर सभी वृंदावन वासियों को गोलोक धाम लेके जाते हैं और फिर स्वयं भी अंतर्धान हो जाते हैं। ये सब 89 चैप्टर्स में उसका वर्णन किया गया है, 79 अध्यायों में श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन दिया है। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो श्री कृष्ण नाम की किताब भी अलग है, जो गोष्ठी रूप कथा रूप में उसका वर्णन हमारे प्रभुपाद जी महाराज ने बड़े प्रेम से पहले से कर दिया था। सब लोगों को श्लोक संस्कृत उसका अनुवाद वगैरह बहुत, क्या कहते हैं मराठी में, किचकट ऐसा लगता है उनको बहुत, लेकिन कथा रूप में उनको बहते हुए प्रवाही कथा के रूप में सुनना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का पूरा अनुवाद करने के पहले ही, बहुत पहले ही, श्री कृष्ण नाम का ग्रंथ प्रकट किया। वो आज भी अवेलेबल है, भारत की सारी भाषा में अवेलेबल है। मेरी माता जी ने उसको करीब 10-20 बार पढ़ा हुआ है कन्नड़ में। अभी तो वो बहुत बुढ़ी हो गई है, पढ़ नहीं सकती, लेकिन उस समय पे जब पढ़ सकती थी 60-70 की उम्र में, हर दिन पूरा दिन पढ़ती थी उसको कृष्ण की लीला। वही उसका धन है, वही उसको तारेगा अंतिम समय पे। श्री कृष्ण का सान्निध्य ही हम सबको तारने वाला है, बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ डुबाने वाला है। हमारा धन, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा प्रभाव सब डुबाने वाला है, कुछ काम में आने वाला नहीं। काम अगर आने वाला है तो केवल श्री कृष्ण, उनका नाम, उनकी स्मृति, उनकी कथा, उनकी सेवा जो की है आपने, उनके भक्तों का संग किया है, वही आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, अक्षय खाते में। बाकी सब क्षय खाते में है, डालो खत्म होते जाएगा, डालो खत्म होते जाएगा, जमा करो खत्म हो जाएगा, और आखिर में जो बचेगा वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ ले जा सकते नहीं आप। तो ऐसे 10 स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं के अंतर्गत श्री गिरिराज गोवर्धन की कथा आती है। गिरिराज गोवर्धन की, श्री कृष्ण भगवान के लीला का एक अविभाज्य अंग है वो, अविभाज्य व्यक्तिमत्व है। गिरिराज के सान्निध्य के बिना श्री वृंदावन परिपूर्ण नहीं है, गिरिराज के सान्निध्य के बिना श्री कृष्ण परिपूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण के भक्त अपने आप को अधूरे समझते हैं, श्री राधा रानी अपने आप को अधूरे समझती है, इसलिए पहले बोल देती है मैं आऊंगी नहीं। अगर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जमुना जी नहीं है, तो मैं नहीं आऊंगी। भगवान भी श्री राधा रानी के अथीम कृपा से हमारे लिए आज भी पृथ्वी पर श्री वृंदावन गोवर्धन जमुना जी उपस्थित हैं। ये मत समझना कि अरे वो तो हरे कृष्ण लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए, सभी जीव सृष्टि के लिए ये वृंदावन धाम गोवर्धन जमुना कल्याणकारी है। और पृथ्वी पर उसको स्थित किया गया है, उस भूमि को एक विमान की तरह, वो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर नहीं भी है। इसलिए प्रलय काल में पृथ्वी नाश होती है, लेकिन श्री वृंदावन धाम वही रहता है, फिर नई पृथ्वी आती, फिर नई पर बसा देते हैं उसको। वो एक शाश्वत अस्तित्व है, समय का प्रभाव उस पर नहीं होता है, दिव्य अस्तित्व है, इट इज डिवाइन प्रेजेंस। तो श्री गिरिराज गोवर्धन का इतिहास ऐसा है कि श्री गिरिराज गोवर्धन गौलोक धाम में जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, राधा रानी गोपियों का निर्माण किया, ग्वाल बालों का निर्माण किया, तो एक दिन राधा रानी के मन में ऐसा विचार आया कि हमारे और आपके संग के लिए एक उत्कट स्थान होना चाहिए, जहां केवल अंतरंग लीलाओं का प्राकट्य होना चाहिए। जैसे भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो कोई साधारण मेहमान आए तो हम उसको हॉल में बिठाते हैं, वहीं पर चाय पिलाते हैं और वहीं पर विदा कर देते हैं। कोई रिश्तेदार आया क्लोज, तो उसको अंदर तक लेके जाते हैं, और बहुत कोई निकट का स्नेही आया तो उसको बेडरूम में, अंतपुर में, सब जगह ले जाते हैं, सब जगह बिठाते हैं उनको, है ना। वो आपका रिश्ता कितना गहरा है उसके अनुसार आपके घर के अंदर के कमरे उनको दिखाते हैं आप, बाकी सब लोग आपके बेडरूम तक प्रवेश नहीं कर सकते। तो वैसे बहुत सारे लीलाएं भगवान की है, नरसिंह भगवान बनकर आते हैं, वामन भगवान बनकर आते हैं, बहुत सारी ऐश्वर्यपूर्ण लीला करते हैं, लेकिन जब माधुर्यपूर्ण लीला करते हैं तो सब लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान के जो निकट के पार्षद हैं वही इसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे निकट के पार्षदों के लिए, निकट की अंतरंग गहरी लीलाओं को संपन्न करने के लिए राजा रानी की इच्छा होती है कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर वो संपन्न कर सकते हैं। उसी समय भगवान के वक्षस्थल से एक दिव्य तेज का निर्माण होता है, नील तेज का, और सबके आंखों के सामने भगवान के वक्षस्थल से प्रकट होकर वो गौलोक धाम के भूमि पर स्थापित हो जाता है। और तुरंत उस तेज का रूपांतर एक पर्वत में होता है, और सबके आंखों के सामने गिरिराज गोवर्धन का जन्म होता है। गिरिराज गोवर्धन की, तो वो अनंत मात्रा में बढ़ते ही जा रहा था सबके आंखों के सामने, अनंत करोड़ों योजन आकाश में गया, अनंत करोड़ों योजन विस्तार हो गया उसको चारों तरफ से। फिर कृष्ण ने उसको रोका एक जगह पर, बस और नहीं। तो फिर वो गिरिराज गोवर्धन जब प्रकट हुआ, उसका दर्शन करके सब गोपियां, ग्वाल बाल, सब ब्रजवासीगण, गौलोकवासी बहुत प्रफुल्लित हो गए। उसके अंदर क्या नहीं था, उसके अंदर झरने थे, तालाब थे, बैठने के लिए गुप्त गुफाएं थी, बहुत सुंदर उपवन थे, बगीचे थे, हरियाली थी, जड़ी बूटियां थी, रत्न थे, कल्प वृक्ष थे, छाया थी, खुली जगहें थी, निकुंज थे, कुंज थे। निकुंज, कुंज का अंदर क्या है, निकुंज बंद होता है, प्राइवेट वन, सब जगह से क्लोज होता है, ऊपर से भी क्लोज, और कुंज जो है वो खुला होता है। तो कुंज निकुंजों से भरा हुआ वैविध्यपूर्ण ये स्थिति गोवर्धन की थी। तो फिर भगवान ने वहां पर रासलीला रचाई गौलोक वृंदावन में। और जब, जैसे मैंने कल की कथाओं को जोड़कर आज की कथा बता रहा हूं, जब श्री कृष्ण भगवान ने अनाउंसमेंट किया कि मैं भी जाऊंगा और लीला करूंगा और कंस जैसे भयंकर दैत्यों का वध करूंगा, तो उस समय गोवर्धन जी को आदेश हुआ कि आप जाइए। तो गोवर्धन कैसे आए पृथ्वी पर, गोवर्धन लीला के आधार से, लीला के सान्निध्य से, लौकिक दृष्टि से द्रोण पर्वत के पुत्र बने वो। अभी आप कहेंगे द्रोण पर्वत को भी पुत्र होता है क्या, हम तो देखते हैं कि जो जीव जंतु उनको पुत्र होता है, लेकिन ये सारे जो है, पर्वत है, नदियां हैं, ये सब व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति नदी के रूप में सेवा करते हैं भगवान की, कुछ व्यक्ति धाम के रूप में सेवा करते हैं, कुछ व्यक्ति धाम के पर्वत के रूप में सेवा करते हैं। ये सभी सजीव हैं, सभी चेतन हैं, भगवान की लीलाओं को सानिध्य सहायता करने के लिए विविध रूप से भगवान का सहायता करते, कुछ पेड़ बन जाते हैं भक्त लोग, कल्प वृक्ष बन जाते हैं, कुछ वन बन जाते हैं, भगवान को सहायता। जैसे शंकर जी पर्वत बने हैं नंदीश्वर नंदगांव में, विष्णु जी गोवर्धन बने स्वयं, ऐसे दिव्य विभूति है गोवर्धन। तो द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में हिमालय में उनका जन्म होता है, और जन्म होते ही उनके अंदर के जो अस्तित्व में है रत्न माणिक मोती जड़ी बूटी, उसके प्रकाश से पूरा हिमालय प्रकाशित हो जाता है। तो वहां से एक पुलत्स्य मुनि जो है ना, पुलत्स्य मुनि का इतिहास भागवत में भी दिया है, पुलह पुलत्स्य ऐसे कई मुनियों का चरित्र का वर्णन दिया भागवत में, बहुत महान ऋषि थे, काशी में रहने वाले थे। और काशी में कैसे है, कोई पर्वत नहीं है, केवल भूमि है, सब जगह पर्वत नहीं होते हैं। पर्वत का होना बहुत ही पवित्र माना गया है, पर्वत पर भजन करना बहुत अनुकूल होता है, कई जगह पर भजन करना अनुकूल होता है। जैसे भगवान विष्णु का मंदिर, तुलसी का सान्निध्य, नदी किनारा, सरोवर किनारा, समुद्र किनारा, पर्वत का सान्निध्य, पर्वत की चोटी पर, ये सब बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान है जहां पर भजन बहुत अच्छी तरह से होता है। और आप शहर में रहेंगे तो शहर में भजन करना मुश्किल है, क्योंकि शहर में बहुत रजोगुण चलता रहता है, पैशन, वहां पर भजन ठीक से नहीं होता है, मन भटकते रहता है। और खास करके जहां पर व्यभिचार नशा जुआ मांसाहार होता है वहां पर भजन नहीं हो सकता है। और एक संघ जगह है भक्तों का संघ, जहां भक्त लोग इकट्ठे बैठते हैं तो भजन बहुत अच्छी तरह से होता है। जैसे आज सुबह रूम पे बैठते तो ठीक से नहीं होता, मंदिर में भक्तों के बीच में बैठेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे प्रार्थना पूर्वक हो सकता है। तो वैसे ये घूमते घूमते जब हिमालय आए तो उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया, इतने मोहित हो गए कि ये तो पर्याप्त है सब कुछ, इसमें फल है फूल है सरोवर है कंद है, हाँ कंदर यानी गिरी कंदर का मतलब क्या, गुफाएं हैं, स्नान करने के लिए जल है, पीने के लिए जल है, खाने के लिए भोजन के लिए फल है, सब कुछ है यहाँ पर, एकांत है, रमणीक स्थान है, एवरीथिंग इज देयर अनुकूल भजन करने के लिए। और हमारे काशी में पर्वत नहीं है तो हम इस पर्वत को ले जाएंगे काशी में। आप कहेंगे प्रयाग क्या प्रभु जी बताते हैं आप, इधर से पर्वत ले जाएंगे उधर रखेंगे, हाँ इधर से घर उठा के यहाँ रखेंगे, वो सब हमारी सीमित बुद्धि के लिए प्रश्न आता है मन में। लेकिन जीव जब परिपूर्णता सिद्धि प्राप्त करता है तो वो स्वयं नौ रूप में अपने आप को विभाजित कर सकता है, नौ रूप कर सकता है, नौ प्रकार के, मतलब मैं नौ बन सकता हूं, नौ विश्वरूप दास, और सभी अलग अलग अपना अपना काम करेंगे। और जीव ऐसे पर्वतों को एक फूल की तरह उठा सकता है, इतनी सिद्धियां प्राप्त है, आठ प्रकार की सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धि प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको ये साइंस पता है उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर हम डॉक्टर लोग ऐसे नर्व्स पकड़ते हैं तो बता देते हैं आपको क्या बीमारी है, अब अरे बड़ी सिद्धि प्राप्त है उनको, सिद्धि नहीं ये साइंस है, ही आप सीखेंगे तो आपको भी पता चलेगा, ये विद्या है, उसके लिए प्रवेश लेना पड़ता है। अभी स्टेथोस्कोप हृदय पर लगाएंगे, बोलेंगे एक वाल खराब हो गया आपका, अब ले बड़ी सिद्धि है इनके पास, एक यंत्र कान में लगाया पूरा अंदर का देख लिया, बताओ उन्होंने पेट को हाथ लगाया बोले आपका ये बीमारी है, वो कोई जादू नहीं है, साइंस है, उसके लिए अभ्यासक्रम होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, उसके लगन लगानी होती है, फिर अपने आप को सब आपको पता चलता है। फिर कभी कभी मरीज को ऐसा देख के बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, एक्सपीरियंस है ना। तो उस तरह से ये सिद्धियां हैं। तो पर्वत को उठाना कोई बड़ी बात नहीं। तो द्रोण के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि हमारा आपका पुत्र जो है बहुत ही आकर्षक है, सुंदर है, भजन के लिए अनुकूल है, हम चाहते हैं उसको ले जाएं। तो बेचारे पुत्र के वियोग की भावना से बेहोश हो गए, सहज नहीं कर पाए, फिर क्या, अगर साधु की आज्ञा है तो टाल नहीं सकते उसको, तो हाँ कह दिया। फिर गोवर्धन तैयार हो गए तुरंत, गोवर्धन तैयार क्यों हो गए, गोवर्धन का जो अंतिम गंतव्य स्थान है वो कहाँ पर है, श्री वृंदावन धाम, जहाँ ठाकुर जी आएंगे, इसके लिए उनको भेजा गया है। तो व्याकुल थे वो, कौन ले जाएगा मुझे वृंदावन, तो बोले आ गए पुलत्स्य मुनि, चलो उनके पीछे, बहाना बना के। एक शर्त रखते हूँ, बड़े दिव्य और श्रेष्ठ भक्त थे वो भगवान के, उन्होंने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, आप जब मुझे उठाएंगे ना तो कहीं पर जमीन पर नहीं रखेंगे, बस सीधे आपको जहां रखना है एक बार वहां रख दिया, वहां से मैं फिर नहीं हिलूंगा। तो आपका कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन कि आप हमको उठाए रखेंगे, जब तक आपको जहां रखना है वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको उठाए रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल नॉट अ बिग थिंग। तो चलते हैं वहां से, हिमालय से उठाकर चलते हैं। लोग यहां पर बहस करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, 7 साल के बालक ने गोवर्धन को उठाया। अरे 7 साल के बालक तो भगवान है स्वयं, और भगवान का जो अणुमात्र अंश है पुलत्स्य मुनि, वो भी उसको आराम से उठा के गेंद की तरह ले जा रहे हैं, वो भी हिमालय से। भगवान ने तो एक ही जगह उठ खड़ा करके रखा था उसको, एक ही जगह पकड़ के रखा था। ये तो लेके चल रहे हैं आराम से, कहां से कहां, हिमालय में कितने किलोमीटर का अंतर है, वहां से चल के आ रहे हैं काशी की ओर जा रहे हैं, और भी आराम से, ऐसा पसीना नहीं बह रहा उनका, कोई सपोर्ट दो कोई सपोर्ट दो, गिर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से चल रहे हैं बड़े प्रेम से। तो बीच के रास्ते में वृंदावन आता है, तो वृंदावन आते ही गोवर्धन व्याकुल हो जाते हैं, मेरा तो गंतव्य स्थान आ गया, इनका तो नहीं आया अब तक। तो वो उनका भक्ति और प्रेम का प्रभाव इतना तेज होता है कि योगी के ऊपर वो प्रभावित कर देता है उस प्रभाव को। अभी योगी है ना, ये भक्त नहीं है, भक्त भी है लेकिन अधिकतर योगी है, वो अपने अपने योग क्रिया में व्यस्त हैं, बालिक सिद्धियां उनके पास। योग का बल भक्ति के बल के सामने फीका पड़ जाता है। भगवान भी कहते हैं ना, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः, सभी योगियों में जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मेरे हृदय को जीत लेता है, मेरे अंतरात्मा को जीत लेता है। तो ये भक्त हैं, ये कोई योगी वगी नहीं है, और उठाने वाला योगी है। तो उठाने वाले योगी को जोरदार लघु शंका का वेग आता है, जिसको लघु शंका दीर्घ शंका सभी शंकाओं पर कंट्रोल है, वो इस लघु शंका को रोक नहीं पाता है और विचार भी कर नहीं पाता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे कैसे अनियंत्रित भाव आ रहा है, मुझे नियंत्रण था वो कहां गया, ऐसा कुछ इतना जोर से वेग आता है कि तुरंत उसको नीचे रखता है और भागता है। लघु शंका का निवारण करता है, शुद्ध होकर वापस आता है और सोच रहा है कि ठीक है वो उठो वापस उठाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं उठ रहा है। जब वहां पर उठाने की कोशिश किया था तुरंत उठ गए थे, यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं उठ रहा है, क्या कारण है उसके? वहां पर गोवर्धन जी की उठने की इच्छा थी इसलिए वो उठा सके उसको, यहां पर अभी उठने की इच्छा नहीं है तो नहीं उठा रहे हैं। योगी का बल नहीं है वो, जो व्यक्ति है उसको उठाने की इच्छा है तो वो उठ गए, अभी नहीं उठने की इच्छा है तो नहीं उठ रहे हैं। पूरा सारा मंत्र तंत्र बोल के अपना सिद्धि लगा कर उठा रहे हैं फिर भी नहीं उठा पाए, परेशान हो गए, गोवर्धन क्यों नहीं उठ रहे हो, हमारा वादा था काशी में ले जाएंगे आपको, हमारा भी वादा था आप रखेंगे तो हम नहीं उठेंगे वो आप क्यों भूल गए, आप क्यों लघु शंका में गए हमको रखकर, हमने थोड़ी कहा था आपको रोकने के लिए, हम तो आपके हाथ में ही थे, थोड़ी हम लोग हम खुद कूद गए उसके अंदर, हम तो आपके हाथ में ही विराजमान थे, आपने रखा तो हम बैठ गए, अभी हमारा वादा है कि हम नहीं उठेंगे। उसका रहस्य है कि वो श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन भूमि थी जहां पर कृष्ण भगवान अवतरित होकर लीला करने वाले हैं। तो क्रोधित हो गया ना, उनका कुछ प्लान फेल हो गया, अभी काशी में लेके जाने के लिए इतना मेहनत किया था तो सब बेकार हो गया, शाप दे दिया उसको, हमारी बात नहीं मानते हो, रोज एक तिल के आकार से जमीन पर धस जाओगे, यू विल सिंक इन द ग्राउंड बाय द साइज ऑफ मस्टर्ड सीड सेसमी सीड। बोले कोई बात नहीं, बहुत समय है मैं बहुत ऊंचा हूं, कृष्ण भगवान तक तो रहूंगा ही मैं, चिंता मत करना। तो सत्ययुग बीत गया, त्रेतायुग बीत गया, फिर द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण आए, तब तक तो बहुत छोटा हो गया था। आज भी हम 35 साल में जब पहले बार देखा था 35 साल पहले और आज देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़े छोटे हो गए हैं, ध्यान से आपने देखा होगा। तो अब एक तिल कितना होता है, कितना मिलीमीटर होता है, रोज के एक मिलीमीटर को समझेगा भी नहीं, लेकिन 10 साल के बाद में आएंगे तो समझेगा ना कि 6 इंच गया या तो 1 फुट गया। तो भगवान ने जो उठाया था पर्वत, वो तो छोटा हुआ पर्वत भगवान ने एक जगह उठाया था, पुलस्त्य मुनि ने तो ओरिजिनल पर्वत उठाया था जो भगवान के अणुमात्र अंश है, ममय वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसे अनंत अंशों में से एक अंश है वो जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, वो पूरे पर्वत को उठा रहा है आसानी से। तो उनके परम पिता श्री कृष्ण नहीं उठा सकते क्या उसको? जैसे कल हमने बताया था जो गोवर्धन पर्वत जिस पृथ्वी पर है उसको वो अवकाश में तैरा रहे हैं, तो अपने उंगली के ऊपर वो पर्वत को तैराना उसके लिए मुश्किल है क्या? अरे हम ऐरे गहरे की बात नहीं कर रहे, हम श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम सृष्टि निर्माण करता गौलोकेश्वर की बात कर रहे हैं, साधारण भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, अवजानंतु माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, कि जब भगवान मनुष्य का शरीर लेकर जन्म लेते हैं तो हम उनको अपना जैसा ही समझते हैं, हम जो करते हैं वैसा ही करते होंगे, हमारे अंदर जो क्षमता है वैसे ही क्षमता होगी, हमारे मन में जो विकार है इनके मन में भी हो गए। हम औरतों को इस प्रकार देखते हैं तो वो भी ऐसे देखते होंगे। हाँ, अवजानंती कहते हैं उसको। अवजानंती मतलब क्या, जानना और अवजानंती फर्क है, सही जानना और गलत जानना, वो अवजानंती। उसी दिव्य भगवान को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं। तुकाराम महाराज भी आपके भाई होते ना तो आप बोले ए तुकाराम क्या कर रहे हैं तू, ऐसे बात करेंगे, क्योंकि घर के लिए वो तुकया है, बाहर के लिए संत तुकाराम है, हार डालने जायक है, वंदन करने योग्य है, लेकिन भाई बहनों के लिए तो तुकया है वो, कितना भी महान क्यों नहीं होगा। तो अधिक सान्निध्य करने से वो अज्ञान पैदा होता है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट कंटेम्प्ट। एनीवेज, तो गोवर्धन जी वहीं रुक गए, फिर परेशान होके पुलत से मैंने अपने रास्ते में निकल गए और ये इंतजार में बैठे हैं। अभी त्रेतायुग आता है, वेट कर रहे हैं कब आएंगे भगवान और सेवा देंगे। देखो भक्त के लिए ना उसका जीवन क्या होता है, भक्त का जीवन, भक्त का जीवन केवल भगवान की सेवा है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है। बाकी सब हलवा लड्डू पूरी उसको आनंद देगी लेकिन ज्यादा आनंद नहीं देगी। उसका जीवन का जो सार है वो भगवान की सेवा है। जब तक भगवत को भक्त को भगवान की सेवा नहीं प्राप्त होता, भक्त व्याकुल रहता है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है ना, वैसे भक्त जो है वो सेवा के बिना तड़पते रहता है। सेवा मिलेगी तो वो शांत रहता है। जस्ट लाइक स्वरूपेण अवस्थितः, अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है सेवा के, तो वो शांति प्राप्त करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो इस सेवा के इंतजार में कब सेवा मिलेगी मैं वेट कर रहा हूं। तो राम भगवान अवतार लेते हैं, वही है ना, वो कृष्ण भगवान राम एक ही है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो राम के रूप में आते हैं, और फिर आप जानते हैं सीता का हरण होता है, फिर अशोक वाटिका में है पता चलता है, फिर पता चलता है कि इसमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो ब्रिज के लिए पर्वत लेके आओ, पर चट्टान लेके आओ, सब लोग दौड़ रहे हैं, बंदर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, डाल रहे हैं, राम का नाम लिख रहे हैं, उसको तैरा रहे हैं, और एक फ्लोटिंग ब्रिज तैयार हो रहा है, सेतु बंद। हाँ, तो हनुमान जी सबसे बड़े उसमें वर्कर हैं, वो आकाश में उड़ रहे हैं और दूर दूर तक कन्याकुमारी से हिमालय तक छलांग लगा रहे हैं, वहां से पर्वतों को उठाकर ले जा रहे हैं, फटाफट बनाना है ना उनको, ये 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, आराम से बनाओ उसको, बहुत सुंदरता से डेकोरेट करके लाइट वाइट लगा के उसको रत्नमत लगाएंगे। नहीं, इमरजेंसी था, सीता ने बहुत मैंडेट दिया था उधर, इतने समय में नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो वहां पर बहुत इमरजेंसी में काम चल रहा था, तो कैसे छोटे छोटे डेकोरेटिव साइज ऐसे वाले पर्वत पत्थर लाने का कोई काम नहीं था उधर, जो है वो लेके आओ, राम का नाम लिखो, लटकाओ उसको अंदर। तो बीच में 7 कोस की जगह लास्ट रुक गई, तो हनुमान जी ढूंढ रहे अभी कोई एक ही मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देखा तो अरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत सुंदर पर्वत है, तो लिखा ये एक ही उठाएंगे तो एक ही बार काम हो जाएगा। तो हनुमान जी तो बहुत बलशाली है ना, बहुत बलवान है वो, वैसे ही उठा सकते हैं, तो आए आपने जल्दी जल्दी में उठाने का प्रयास किया तो उठने रहे। अरे तो सांस लिया, फिर 2 हाथ लगाया, फिर भी नहीं उठ रहे, पूरा बल लगाया, प्रभु रामचंद्र का नाम लिया, पूरा बल लगाया, फिर भी नहीं उठ रहे। अरे तो बड़ी बड़ी विचित्र चीज है, क्या बात है, देखते हैं इसका विस्तार कहां तक है, मतलब कहां तक फैला हुआ, इधर कितना तक है, तब उतना बल लगाऊंगा। तो वो इस दिशा में जाने लगे विस्तार देखने के लिए, तो गोवर्धन जी वहां बढ़ने लगे। तो ये उड़ते उड़ते गए तो गोवर्धन का अंत ही नहीं मिल रहा है उनको, तो बोले इस साइड में देखेंगे। तो इस साइड में गए वो, उड़ते 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 गोवर्धन जी यहां बढ़ते 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 जा रहे। तब समझ में आया उनको, कोई साधारण चीज नहीं है ये, दिव्य विभूति है। मैंने तो प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, गौरव नहीं किया, तुरंत अपना उठाने का कोशिश किया, अभी दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज आप कौन हो। तो कहते हैं मैं गोवर्धन हूं, क्यों उठा रहे मुझे आप, आप बताते नहीं कुछ नहीं, उठाने का कोशिश करते। तो हनुमान जी संक्षेप में पूरा रामायण सुनाते उनको, टाइम तो बहुत कम है ना, पूरा कथा सुनाएंगे तो 10 दिन चले जाएंगे, उधर सीता मैया आत्महत्या कर लेंगे, संक्षेप में बता देते हैं। और जैसे ना बुद्धिमान व्यक्ति को संक्षेप में सब कुछ समझ में आता है, कोई विस्तार में कथा करने की जरूरत नहीं, बुद्धिमान को इशारा भी काफी होता है। तो ऐसे कई इशारे हम इस प्रवचन में कर चुके हैं, जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे। तो तुरंत गोवर्धन जी उठ जाते हैं, फूल की रुई के टुकड़े की तरह बन जाते हैं, इतने हल्के होकर उनको तुरंत उठाकर आकाश में ले जाते हैं। जैसे ही आकाश में उठाकर दक्षिण की ओर यात्रा करने का आरंभ होता है, आकाशवाणी होती है, सेतु बंद पूरा हो गया है, अभी कोई पहाड़ की जरूरत नहीं, इसको तुरंत वापस उठा अपनी जगह पे लेते हैं। जैसे ही हनुमान जी पर्वत को अभी आशा दी ना उसको कि प्रभु राम की सेवा में जाएंगे, और सेवा अभी मिलने वाली है, इस खुशी में थे वो कैंसल हो गए, सुना तब वापस रखा, इतने दुखी हो गए, इतने दुखी, इतना रोए कि उनका रोना देखकर हनुमान जी हैरान हो गए। बोले ऐसा भी कोई भक्त होता है, इतना प्रेम, इतना आतुरता भगवान की सेवा, इतना लौल्य उन्हें कभी देखा नहीं। हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक महान भक्त हैं प्रभु के, और महान भक्त जब भी किसी भक्त को देखता है तो वही उसकी महानता को पहचान सकता है ना। एक डॉक्टर होगा MBBS, तो वो MD कौन, 10 में से कौन सा अच्छा है वो ही पहचान सकता है। आपके सबके लिए सब MD एक ही होते हैं, लेकिन MBBS व्यक्ति को पता होता है कि कौन सा MD अच्छा है। एक बार MD हो गया तो उसका सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर कौन है वो बराबर पहचानता है उसको, ये 10 में से ना ये सर्जन अच्छा है बहुत। उसी प्रकार से एक भक्त जो होता है वही दूसरे भक्त की महानता को पहचान सकता है। तो गोवर्धन का ये भाव देखकर बड़े प्रभावित हो गए हनुमान जी, और प्रभु को जाके संक्षेप में पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे भक्त की मेरी आज मुलाकात हो गई कि मैं तो खुद ही हैरान हो गया देख के उसको। तो उन्हें कहा मेरा भक्त है वो गोवर्धन, उसे जरूर वादा करना जाके कि आज जो दुख हुआ है तुमको सेवा न मिलने की वजह से, मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो आपके ही इर्द गिर्द मेरी अंतरंग गहरी उत्कट लीलाओं को संपन्न करूंगा। डोंट वरी, वेट पेशेंटली, मैं आ रहा हूं। तो वो जो वादा था प्रभु रामचंद्र का, उसको पूरा करने के लिए 7 कोस की जगह थी, 7 कोस के गोवर्धन थे, वो वहां बैठ नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 रात उसको उठा के अपने सर पे रखा, स्थान दिया अपने सर के ऊपर, छत्र के रूप में उपयोग किया उनका, इतना सम्मान दिया गोवर्धन को। क्या किया भगवान ने, उसका जो भक्ति भाव है उसको प्रतिसाद दिया भगवान ने, अप्रिशिएट किया उनको कि आपका भक्ति भाव का फल यह है कि मैं आपको अपने शीश पे धारण कर रहा हूं 7 दिन और 7 रात। तो यह दूसरी कथा है द्वापर की, त्रेता युग की। अभी आप सब लोग जानते हैं अभी जो भगवान के साथ लीला हुई, संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं आपको, क्योंकि गोवर्धन की लीला जो है वो बहुत ही सुंदर और उपदेशात्मक सुंदर लीला है भगवान की। उसमें भगवान ने कई प्रकार के उपदेश और शिक्षाएं मानव जाति के लिए दिए हैं। इंद्र की पूजा हो रही थी हर साल की तरह कार्तिक महीने में, तो भगवान को पता चली गया था, क्योंकि भगवान सबके मालिक हैं, सबके मन की बात जानते हैं। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र पद है, जैसे डायरेक्टर, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो पद होता है, उसमें व्यक्ति बैठ जाता है। जैसे आज एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, पहले कोई और थे, वैसे इंद्र भी एक पद है, उसमें कोई एक जीव जाकर योग्य व्यक्ति इंद्र बन जाता है। तो उस समय जो इंद्र थे उनको अहंकार हो गया था अपने पद का, अपने प्रभाव का, अपने शक्ति का, अपने पावर का, तो भगवान को उसके गर्व को नष्ट करना था। भगवान को सबसे ना पसंद चीज क्या है, आपके अंदर अनंत दुर्गुण है लेकिन भगवान को दुर्लक्ष कर सकते हैं, लेकिन एक दुर्गुण अगर होगा तो भगवान उसको दुर्लक्ष नहीं कर सकते, वो है अहंकार। और अहंकार की जगह नम्रता होगी तो उसके जगह बहुत सद्गुण होंगे, दुर्गुण होंगे तो भगवान उसको दुर्लक्ष कर सकते हैं। लेकिन बहुत सद्गुण है हमारे अंदर, बहुत अच्छे अच्छे गुण है, लेकिन उसके साथ अहंकार भी है, तो सारे सद्गुण जो है वेस्ट हो जाते हैं एक अहंकार की वजह से। तो इंद्र भगवान के भक्त हैं बड़े, लेकिन अहंकार के वश जो है भगवान सोचते हैं कि इसका इलाज करना जरूरी है। जाते हैं, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बोल रहे इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? बोले जल देते हैं, जल से हमारी घास आती है, घास से गाय खाती है, गाय से दूध आता है, और जल से हमारा धान्य उगता है, हमको भोजन मिलता है, गेहूं आटा सब प्राप्त हो जाता है, तो इंद्र ही मालिक है, उनकी वजह से वर्षा होती है। तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका ड्यूटी है वो जल देने का। तो सूर्य की पूजा अलग से क्यों नहीं करते? वो तो प्रकाश देते हैं। वायु की पूजा नहीं करते, हवा देते हैं, थोड़ी ऐसे होता है। सबको अपना अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देकर रखा है, उनको करना ही है वो, आप पूजा करो ना करो उनको जल देना ही है, आप पूजा करो या नहीं करो। इसमें से कितने लोग सूर्य की पूजा करते हैं बताओ? मैंने आज तक नहीं किया है, लेकिन फिर रोज सुबह आ रहे हैं सूर्य, लाइट दे रहे हैं हवा रोज आ रही है, ऑक्सीजन दे रही है। कितने दिन आपने पृथ्वी का पूजा किया है? फिर पृथ्वी हमको रोज धान्य दे रही है, फल दे रही है, फूल दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो भगवान बता रहे हैं ये अलग से इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गोवर्धन हमारे भगवान है, गोवर्धन की पूजा करेंगे। अभी छोटा सा बालक कुछ बोल रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, फिर भी नंद बाबा ग्वाल बाल जो है बोला ठीक है ठीक है, बोले कभी करेंगे। वो कहते बाद में करेंगे, अभी गोवर्धन की पूजा करेंगे, इसकी इंद्र की पूजा करेंगे, उसके बाद अलग से गोवर्धन पूजा करेंगे। बोले नहीं पापा नहीं, यही सामग्री से इसी दिन उसी जगह पर आपको गोवर्धन की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा कैंसल करनी है आपको। वो समझा रहे नहीं नहीं उसको भी करेंगे इसका, डरे ना उन मन में, इंद्र का कोप आएगा तो इंद्र कुपित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर भयंकर वर्षा देंगे नहीं देंगे, अतिवृष्टि करेंगे, पता नहीं क्या उद्ध्वंस करेंगे, डर होता है ना मन में। वो ये कह रहे हैं नहीं पापा मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको ये कैंसल करना है और सारा साहित्य जो जुटा के रखा है वो गोवर्धन की पूजा में लगाना है। नो टू पूजा, ओनली वन पूजा, ओ टूडे ओनली। तो फिर क्या है, सब सामान लगा देते हैं वहां पर, जितना भी घर में सामान है वो सब लाते हैं। भाई हमारे घर में पूजा होती है तो हम लोग सब लोग थोड़ी सारा अनाज राशन खत्म कर देते हैं, थोड़ा लगा देते हैं, कल के लिए रखना है, शाम के लिए भी रखना है, अगले दिन के लिए रखना है, बहुत सारा स्टॉक करके रखा है। लेकिन उस दिन सारे ब्रजवासी लोग सारा अपना धन, घर में जितना भी अनाज था, जितना भी साहित्य था, व्यंजन था, सब लेके आके पर्वत के समान भगवान को भोग लगाते हैं। मतलब लड्डू के पर्वत, चावल के पर्वत, मिठाई के पर्वत, और लिक्विड जो थे वो हंडे, हौद बनाते हैं, हौद तालाब बनाते हैं छोटे छोटे, लस्सी और जूस सब डाल देते हैं और कहते हैं कि कई किलोमीटर की जगह, जितने गोवर्धन की परिक्रमा है ना उसके अंदर एक उंगली डालने की जगह भी नहीं थी, इतने सारे भोग लगाए थे, दोनों व्यंजन के बीच में इतनी जगह भी नहीं है जिसमें उंगली प्रवेश कर सके, इतने अनंत व्यंजन लगाए थे सब पर्वत के रूप में। इसलिए क्या कहते हैं उसको, अन्नकूट। कूट का मतलब क्या है, पर्वत, और अन्नकूट का मतलब क्या है, अन्न के पर्वत। और भगवान को भोग लगाया मतलब गोवर्धन को भोग लगाया, तो भगवान स्वयं गोवर्धन बन गए। तो सब ग्वाल बाल देख रहे, अरे ये तो यहां भी है उधर भी है, अपने साथ भी खड़ा है वो भी पर्वत भी है। वो आश्चर्य लगा उनको, बड़ा जबरदस्त भाई है हमारा, बड़ा जबरदस्त मित्र है हमारा, देखो कितने अद्भुत कार्य करता है। और एक अद्भुत कार्य किया ऐसे ना, कुछ क्षणों के अंदर जितने अनंत व्यंजन कूट के रूप में अर्पण किए थे वो सब एक ही सेकंड में खा लिया उन्होंने। सब इतने बनाने को टाइम लगा था, लगाने को टाइम लगा था, मंत्र बोलने को टाइम लगा था। उसके पहले भगवान ने गोवर्धन का परिक्रमा किया, सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा इतिहास में भगवान के नेतृत्व में हुई, भगवान ने अपने नेतृत्व में गोवर्धन परिक्रमा संपन्न कराई। उसके बाद भोग लगाया गया, उसके बाद कृष्ण गोवर्धन बने, उसके बाद भगवान ने सारा भोग खा लिया और बोलेंगे आनी और बोल रहे हैं, मतलब क्या और दो तभी क्या करें, अभी इतना सा घर में सारा सब खाली कर दिया, अभी क्या बनेगा। तो एक तुलसी पत्र अर्पण किया तो भगवान संतुष्ट हो गए, और एक चमत्कार किया, जो सब खाया था वो दोबारा वहां प्रकट किया वैसे के वैसे, और बताया इसको कैसे बांटना है प्रसाद के रूप में। बहुत सुंदर वर्णन है गोवर्धन लीला का। सब लोग खुश हो गए उस दिन, इतना आनंद हुआ, सब नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, महाप्रसाद खा रहे हैं, इतना आनंद का अनुभव किया सारे लोगों ने सिवाय एक व्यक्ति के। वो कौन था, इंद्र। सो लगा मुझे छोड़ के मेरी सेवा कैंसल करके खुशियां मना रहे हैं, तो दंड मिलना चाहिए उनको। समर्थक बादल तुरंत चले जाओ। वे समर्थक कौन है, ये प्रलय काल के समय वर्षा करने वाले बादल हैं। उनकी ड्यूटी पूरे ब्रह्मांड के, एक होता ना एक युग समाप्त होता है उसके अंदर मिनी प्रलय होता है, फिर मिनी प्रलय के बाद में एक महाप्रलय होता है। तो ये पूरे काल में केवल प्रलय मिनी प्रलय में उनका ड्यूटी होता है, बाकी सब आराम करना होता है। वो जवानों को कैसे होता है, दिन भर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन टेंशन भी प्रैक्टिस करते हैं, केवल युद्ध में रियल करना है उनको, बाकी समय अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनका ड्यूटी रहता है, लेकिन एवरीथिंग इज कूल। उस तरह से इनका काम केवल प्रलय काल में होता है। तो इंद्र भगवान को बोल रहे, अरे महाराज प्रलय का समय तो नहीं हुआ है, बीच में क्यों बुला रहे हैं, पूछने का काम नहीं है, मेरा आदेश है जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन को नष्ट करो, बहा दो उसको, ध्वंस कर दो उसका। बोले महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, समय के साथ अपना ड्यूटी लगा हुआ है वही करना चाहिए, मेरा आदेश है आपको, आप चले जाओ वर्षा करो, अपनी जितनी शक्ति है सारा जल वर्षा दो, धो डालो पूरे गोवर्धन को, सब गाय वाय सब खत्म कर दो। क्या समझता है वो बालक अपने आप को, क्या समझते हैं ब्रजवासी अपने आप को, एक नटखट बालक के नटखट बोलों को सुनकर मुझ जैसे इंद्र की पूजा को कैंसिल करते हैं, का दंड भुगतना पड़ेगा उनको। जाते हैं अभी वर्षा करने लगते हैं, अपने कैसे वर्षा होती है, बूंद बूंद वर्षा होती है ना, थोड़ी मूसल, लेकिन मूसलधार का मतलब क्या है, मूसल के जैसे जिसकी धार है, मतलब खंबा है ना, ये खंबा वो हम लोग कूटते हैं ना मसाला उखल में, उसके अंदर होता है मूसल, उससे मसाला कूटते हैं, वो बहुत बड़ा होता है, ऐसे खंबे जैसे एक एक बूंद थी, वो धार के रूप में आकाश से आ रही थी। आप सोच सकते हैं कुछ ही क्षणों में वृंदावन पूरा अंधकार हो गया, भयंकर बिजली कड़क लगी, ठंडक ठंडक निर्माण हो गई, संत कांपने लगे, गाय भैंस बैल सब भागने लगे, पानी में बहने लगे, घर बह रहे हैं, सब लोग ऐसा हाहाकार मच गया। तो आप क्या बोलेंगे, ये कृष्ण है ना, इसके वजह से सब हो रहा है। अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो ये सब नहीं होता। उनकी बात सुना, उनके बाद में ऐसा काम किया, थोड़ी देर में आनंद मिला, देखो अभी क्या हो रहा है। ऐसे किसी ने नहीं कहा, ये केवल हम जैसे लोगों के मन में विचार आ सकता है। वो उसी को पुकार रहे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो कहाँ हो बचाओ, ऐसे नहीं इसको क्यों पुकारना है, उसने तो डुबाया है हमको, उसको पुकार के क्या होगा, ऐसे नहीं बोल रहे, उसी को पुकार रहे हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। कष्ट हो आनंद हो, पीड़ा हो सुख हो, पुकारेंगे उसी को ही। हाँ, मत प्राण नाथस्तु स एव ना परह, आप हमें कुचल दो, गले लगा दो, पास बुलाओ, दूर भगाओ, अपना बनाओ, पराया बनाओ, जो चाहे व्यवहार करो, लेकिन मत प्राण नाथस्तु स एव ना परह, हम आपके भक्त बने रहेंगे, आप हमारे आराध्य प्राणेश्वर भी बने रहेंगे। अभी वो क्या कह रहे हैं, चलो मेरे साथ, तो ऐसे नहीं पूछ रहे अभी काले जा रहे हो, इतना आकार और अभी चल चलो मेरे साथ, नहीं उसके पीछे चले जाते हैं। वो उनको गोवर्धन के बीच में लेके जाते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, अंधकार है, उसके पीछे पूरे ब्रिजवासी जा रहे हैं, सब घर लुट गया, उनका गोदाम लुट गए, सब गाय भैंस जितने बचे उसको कंधे पे लिया, बछड़ों को, बाकी सब बह गए, ले गए उनको बीच में, अभी क्या करोगे। तो कहते हैं ये पर्वत को उठाऊंगा मैं। इसका नाम क्या है, कितने उम्र है इसकी, समझो वो अभी आपको हम गोवर्धन परिक्रमा जाएंगे ना, तो आप बोलोगे इसको दीक्षा क्या करोगे आप, तो बोलेगे मैं ये पर्वत को उठाऊंगी, तो आप क्या बोलेंगे, सब लोग मिलके अभी अभी देखो अभी भी हंस रहे हैं, वे तो बोला भी नहीं उसने, अभी वो बोलेंगे तो सब हंसेंगे, बोले क्या है बालिका है प्रेम से बोल रही है, इसको क्या पता है। ऐसे ही कृष्ण भगवान छोटे से बालक बोल रहे हैं मैं इसको उठाऊंगा, तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे कैसे उठाओगे, कैसे यकीन आएगा हमको, कुछ दिखाओ ना ऐसे हमको पता चलेगा कि आप उठा सकते हो उसको। तो भगवान ने ना इतना बड़ा कदम का पेड़ था जो आप उसको अपने हाथ के बाहुओं के पास में उसको पकड़ नहीं सकते, ऐसा पर्वत को ऐसा भगवान ने बालक रूप में ऐसा उखाड़ दिया उसको पूरा, और उसको ऐसा कपड़े हम लोग निचोड़ते ना, ऐसे निचोड़ दिया पूरा पेड़ को। आज भी वो पेड़ है, आप दर्शन कर सकते हैं, उसका नाम है ऐठा कदम। तो भगवान ने 7 साल की उम्र में उखाड़ा और मरोड़ के उसको छोड़ दिया वहां पर। जब ऐसा कार्य किया तो ग्वाल बालों को लगा कुछ कर सकते हैं। फिर सबके सामने भगवान ने भूमि में प्रवेश किया, उसका नाम है प्रविष्ट गुफा। प्रविष्ट यानी प्रवेश जिसमें किया, उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और जमीन के अंदर जाके पृथ्वी से अंदर जाकर पर्वत को उखाड़ा, बाएं हाथ से उठाया और उठाने के बाद में ऐसे अपने उंगली पे खड़ा कर दिया। सब लोग देखते रहे, अरे 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 देखो क्या कर रहे हैं, उठा दिया पर्वत को, एक उंगली की नोक पर उठा दिया उसको। क्या कह रहे भगवान, हे इंद्र तुम्हारा जो सबसे बड़ा बल है, संवर्तक बादल जो सृष्टि को नाश करने वाला है, तुम्हारी सर्वोत्तम शक्ति जो है उसको मैं मेरे शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से परास्त कर रहा हूं, क्योंकि हमारे शरीर का बाएं हाथ का जो लास्ट उंगली है वो सबसे कमजोर हिस्सा होता है, वो उससे आप कुछ काम नहीं करते। अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड के लास्ट उंगली मतलब सबसे कमजोर, राइट लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड का लास्ट उंगली सबसे कमजोर होती है। तो अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से भगवान ने 7 दिन और 7 रात इस गोवर्धन को उठाए रखा। अभी 7 दिन 7 रात क्यों, 10 दिन 10 रात क्यों नहीं, 700 दिन 700 रात क्यों नहीं, 7,000 दिन और 7,000 रात क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि 7 दिन के बाद में इंद्र का पानी खत्म हो गया, टैंक खाली हो गए, सारा बहा दिया फिर भी टस से मस नहीं हुआ इधर कुछ। ऊपर से भगवान ने पता है क्या किया, भगवान ने चक्र को बुलाया, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन जो अग्नि और तेज का प्रतीक है, उसको बुलाया, देखो मेरी ऐसी इच्छा है। आप जानते सब लोग ना, थोड़ा सा टाइम अधिक लेंगे, ये बताना बहुत जरूरी है। हमारे बॉम्बे में बहुत वर्षा होती है ना, पता है ना आपको, तो हम लोग छतरी खोलते हैं, फिर बहुत भयंकर वर्षा होती है, फिर बहुत भयंकर वर्षा होती है, फिर क्या होता है, सर पे छतरी और पानी यहां तक जा रहे हाथ पकड़ के, यही समाधान है कि मेरा सर नहीं भीग रहा है, लेकिन छतरी के अंदर से भी पानी आता है और बाल भी भीग जाते हैं, फिर में हवा का झोंका छतरी उल्टी हो जाती है, फिर छतरी है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। तो क्या होता है कि पानी ऐसे जा रहा है नीचे, लेकिन नीचे जमा हो रहा है ना ऊपर से, ऐसा ऊपर ऊपर आ रहा है कि नहीं, वो पहले घुटने तक आया, फिर कमर तक आया, फिर छाती तक आया, सब लोग उसमें ही यात्रा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा मुझे ऐसी इच्छा है कि ये मूसलधार वर्षा का एक बूंद पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आप ऐसा सर्कल करो अपना, ऐसे चक्र लगाओ गोवर्धन के इर्द गिर्द में कि एक बूंद भी पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, गिरने के पहले बाष्प होकर वापस जाना चाहिए वो। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो भगवान ने ऐसा इंतजाम किया, नहीं तो 7 दिन में तो इतना तो पानी आता कि नहीं। तो वाल वाल बोलते, अरे भगवान तुमने तो गोवर्धन को उठाया, लेकिन हम तो डूब रहे हैं, उसका क्या? जो छोटे है पहले डूब जाएंगे, जो बड़े है तो बच जाएंगे, कितना गोद में लेंगे छोटों को? तो ऐसा नहीं, ऐसा वातावरण निर्माण होना चाहिए कि गोवर्धन के नीचे को खड़े हैं उनको पता भी चल रहा है कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही। चक्र ने 7 दिन 7 रात ऐसे परिक्रमा किया, अपने प्रभाव से एक भी बूंद जमीन पर उतरने नहीं दिया, पूरा एवरीथिंग इज फाइन। और गोवर्धन के नीचे सारे ब्रजवासी जितने भी लोग थे सब इकट्ठा हो गए, गोपियां इकट्ठा हो गई, ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। एन मौके पे कैसा होता है, दिन के समय ग्वाल बाल गौचारण कर रहे हैं, रात के समय गोपियां नृत्य कर रहे हैं, घर में गए तो माता पिता लीला कर रहे हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होते कभी, अपना अपना सेवा करते रहते हैं। गोवर्धन की लीला एक ऐसी लीला है जिसमें 7 दिन 7 रात सब प्रकार के लोग एक साथ रहे, गाय भी साथ रहे, मोर भी रहे, तोता भी रहे, कोयल भी रही, खरगोश भी रहे, ग्वाल बाल भी रहे, गोपियां भी रही, छोटी मोटी गोपियां, प्रेयकर प्रेयसी गोपियां और माता गोपियां, जैसे जितनी बुजुर्ग गोपियां, बुजुर्ग गोप, छोटे खेलने वाले ग्वाल बाल, बड़े बुजुर्ग ग्वाल बाल, सभी गोप, सभी प्रकार के लोग अपने अपने जानवरों के साथ सभी उपस्थित थे वहां पर, और सबने मिलकर लीला किया उसके अंदर। इसलिए गोवर्धन की लीला सबसे अद्भुत लीला है, सभी रसों की लीला एक साथ में 7 दिन हुई। समय बहुत कम है लेकिन इतना समझना जरूरी है कि गोवर्धन के नीचे क्या हुआ, ये कुतूहल आपका जगह रहना चाहिए। तो कुतूहल जगह रहेगा तो कभी भगवान आपको व्यवस्था करेंगे उसके अंदर क्या हुआ वो समझाने की। उसके बाद ऊपर से तो गोवर्धन के ऊपर वर्षा हो रही कि नहीं, बाकी सब नीचे खड़े हैं, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, भगवान के रूप का अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि 7 दिन 7 रात किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं मांगा। आप सोचते होंगे कब तक कथा करेंगे, ब्रेकफास्ट कब आएगा? किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं मांगा, किसी ने लंच नहीं मांगा, डिनर नहीं मांगा, सोना है, लघु शंका करनी है, किसी ने कुछ बोला नहीं। क्या कारण है उसका? क्योंकि वैसे ही भगवान रूप मनोहर है, उनकी रूप माधुरी इतनी श्रेष्ठ है, और ऊपर से त्रिभंग अवस्था में खड़े हैं, ऊपर से बांसुरी बजा रहे हैं, एक हाथ में पर्वत लिया हुआ है। हमेशा बांसुरी ऐसी बजाते हैं, अभी ऐसे पर्वत पकड़ा है ना तो ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं और त्रिभंग अवस्था में खड़े। इतना सुंदर रूप था उनका कि पहले तो ऐसा ही था कबल, फिर मुरली निकाली, हमने कहा मत बजाओ मत बजाओ, हमने सुना है जब मुरली बजती है तो पत्थर पिघलता है, अगर ये गोवर्धन पिघल जाएगा तो क्या होगा, सारा प्रयास खत्म हो जाएगा हमारा, मत बजाओ मत बजाओ। सबको पता है ना कि यशोदा मैया ने सुना है, सबने सुना है कि मुरली बजाते तो पत्थर पिघल जाता है, पैर का नीचे का भी पिघल जाएगा, ऊपर का भी पिघल जाएगा, तो क्या होगा, बचेगा क्या? फिर भी उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। जैसे मुरली बजाना शुरू किया सब लोग सब कुछ भूल गए, कान से वो अमृत धारा सुन रहे हैं, आंखों से वो गिरिधारी का स्वरूप मुरली बजाते हुए देख रहे हैं, किसी को प्यास भूख का कष्ट नहीं हुआ। अगर आपको भी भूख प्यास पर विजय प्राप्त करना है, भगवान के श्रवण में या भगवान के कथन में, भगवान के रूप में अपने आप को विलीन कर दो, फिर आपको भी कभी भूख प्यास का तक कष्ट नहीं होगा। एकादशी का उपवास अच्छी तरह से करना है, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा में लगे रहो, आपको वो प्यास वास का कष्ट नहीं होगा। कब 12 बजेंगे, क्यों इन्होंने जन्म 12 बजे लिया है, क्यों 12 बजे लिया है, शाम को क्यों नहीं लिया, कम से कम कुछ घंटे उपवास कम हो जाता, ऐसी भावना नहीं आएगी। आप कथा में लगे रहो, आपको पता चलेगा नहीं 1 बज गया, अरे 12 बजे तोड़ना था उपवास, 1 बजे हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान का लीला, भगवान का रूप हमें शरीर के सारे बंधन के ऊपर ले जाता है, त्रिगुणातीत बना देता है, ट्रांसेंडेंटल बना देता है। इसलिए नित्य रूप में भगवान की लीला में लगे रहो, आप मग्न होकर सुनते रहो, सारे इंद्रियों के विकार खत्म हो जाएंगे, सारे इंद्रियों का बंधन खत्म हो जाएगा, सारा लगाव खत्म हो जाएगा आपका, आनंद में रहोगे आप, डूबे रहोगे हमेशा मग्न होकर। तो फिर इसलिए वो 7 दिन 7 रात किसी को कष्ट नहीं हुआ। ऊपर से वर्षा हो रही थी गोवर्धन के ऊपर, वो तो पूरा आघात सहन कर रहा था ना ऊपर से, एक ही व्यक्ति था बेचारा, बाकी सब तो अंदर थे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये उंगली के अग्रभाग से ऐसी शक्ति उनमें संचारित हो रही थी कि गोवर्धन को भी इतनी घनघोर वर्षा होने के बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि कोई खुजली देख कर रहा है उसके पीठ को, ऐसा प्रेम से अनुभव हो रहा था उसको। कहते हैं गोवर्धन के ऊपर जो गिरी कंदर यानी कि गुफाएं थी, उसमें हाथी शेर सब बाहर निकले, डर के मारे भाग रहे जान की टेंशन से। लेकिन गिरिराज गोवर्धन को कुछ भी तकलीफ नहीं हो। कहते हैं कि गिरिराज के ऊपर इतने वृक्ष थे, उससे एक पत्ता भी टूटकर नीचे नहीं गिरा। इतनी भगवान की शक्ति केवल उंगली के अग्रभाग से गोवर्धन को प्राप्त हो रही थी। सोचो आप, भगवान का सानिध्य, भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन, भगवान का संपर्क कितना शक्तिशाली होता है। एक उंगली के अग्रभाग से इतनी शक्ति संचारित हो रही है, प्रलय काल के बादल भी इस गोवर्धन को हिलाने रहे हैं। ना वो हिला, ना वो गिर गया, ना कुछ नहीं हुआ, ना कोई कष्ट हुआ, इतने आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहा था। फिर इनके पानी खत्म हो गया, रोने लगे संवर्तक बादल। इंद्र भगवान को बोल रहे क्या करे अभी, बोले डरो मत, मैं वज्र लेके आता हूं। वज्र का प्रहार किया, वज्र भी किधर से गायब हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वर्षा बंद हो गई। फिर जब उनको पता चला कि वज्र भी नाकाम रहा, संवर्तक बादल भी नाकाम रहे, इसका मतलब ये पर्वत को उठाने वाला भगवान ही हो सकता है, क्योंकि मेरे संवर्तक बादलों का और वज्र का सामना और पराजय केवल भगवान कर सकते हैं, इन देवताओं में किसी में शक्ति नहीं उसकी। तो पहचान गए ये बालक नहीं है, 7 साल का नटखट बोलने वाला, हाँ, जिसको बड़बड़ करते हुए मैंने सोचा था कि ये नटखट बालक को दंड देना जरूरी है, ये बालक नहीं है, स्वयं भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण श्री कृष्ण भगवान है ये। तो एकदम अभी समझ में आया ना क्या किया मैंने, बाप रे, इनके खिलाफ ही मैंने आक्रमण किया। तो नीचे आए माफी मांगने के लिए, इधर से आए तो भगवान ऐसे खड़े थे ना, इधर से आए तो भगवान ने यहां देखा, फिर वो उधर से आए तो भगवान ने इधर देखा, समझ गए अभी कोई चांस नहीं मुझे, भाग गए वहां से, अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास। बोले महाराज बचाओ। बोले मूर्ख व्यक्ति, तुमने अपराध ही ऐसा किया है, कौन बचाएगा आपको, हम कौन होते बचाने वाले, हम तो उनके ही भगवान, उनके ही दास है हम लोग, और तुम उन्हीं का भयंकर अपराध, जघन्य अपराध करके आ रहे हो और बोल रहे बचाओ, कैसे बचा सकते हैं, मूर्ख व्यक्ति हो तुम, क्या फायदा है इंद्र बन के, इतना पद प्राप्त करके इतने दिमाग में भूसा भर के रखा है तुमने, कब समझ में आएगा तुमको सच्चाई क्या है। हाँ ये ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा पावर हो गया ना, बहुत पैसा आ गया, बहुत प्रभाव, बहुत शक्ति, बहुत धन दौलत आ गए ना, तो दिमाग में भूसा भर जाता है अहंकार के वश, और व्यक्ति ऐसा मूर्खता का कार्य करता है ना कि अपना विध्वंस करने वाला कार्य करने लगता है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें जो चकाचौंध करते हैं ना आंखियों आंखों को, ये सब नुकसान करने वाली चीजें हैं, जिसके पीछे हम भागते हैं, पैसा, पावर, फेम, कीर्ति, यश, ये सब बहुत आकर्षित करता है, लेकिन अंत में सब नुकसान करता है हमारा। वो क्या कर बैठा हो, जो पूजनीय वंदनीय भगवान है उनका अपराध कर बैठा। तो बोले महाराज भी क्या करूं, मैं कर चुका हूं, मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, है मेरे दिमाग में भूसा, क्या करूं अभी, बचाओ मुझे आप। तो कहते एक ही रास्ता है तुम्हारे लिए, एक ही रास्ता है, मेरे ज्ञान में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक ही रास्ता है, अगर उनका जो भक्त है, जिसको भगवान उसको अपना भक्त के रूप में मानते हैं, वो नहीं मानता कि मैं उनका भक्त हूं, वो मानते हैं कि ये मेरा भक्त है, ऐसे व्यक्ति के चरणों में गिरोगे और वो अगर आपकी सिफारिश करने में तैयार हो जाएंगे तो कुछ चांस है आपको, नहीं तो गए काम से आप। तो इतने बड़े इंद्र जो है ना, एक सिंपल गाय के पास में आते हैं, सुरूपी गाय, और उनके चरणों में गिर जाते हैं। आप सोच सकते हैं, इंद्र भगवान है वो, देवताओं के राजा देवेंद्र इंद्र है वो, एक गाय के चरणों में गिर जाते हैं, और गाय क्या बोलती है, कोई बात नहीं मैं आपको ले जाऊं भगवान के पास, गाय ऐसा नहीं बोल रही, अभी आ रहे हो तुम, कुछ दिन पहले तो हमको नाश करने के लिए तुले हुए थे, इतनी भयंकर वर्षा की, हमारे बछड़े बह गए, हमारे गए, चले जाओ यहां से, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। भगवान के भक्त जो है ना बहुत दयालु होते हैं, उनके ऊपर कितना भी अपराध करेंगे फिर भी वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो शरणागति में आ गया ना, कोई बात नहीं। इतना सारा भयंकर जघन्य अपराध करने के बाद भी गौ माता जो है उसको ले जाती है भगवान के पास, और भगवान को इंद्र की सिफारिश करती है, बोलती है भगवान इसने अपराध तो किया है लेकिन अभी पश्चाताप कर रहा है, जरा उस पर कृपा कर दो भगवान, छोड़ दो उसको आप। कहते हैं सिफारिश करने के बाद गौ माता के द्वारा पहली बार भगवान इंद्र की ओर मुड़कर देखते हैं और डांटते हैं उसको, फिर वो पश्चाताप करता है, फिर बहुत श्लोक गाता है भगवान के गौरव में रिझाने के लिए उनको, भगवान कहते ठीक है माफ कर दिया आपको, उसके बाद में उसका समाधान नहीं होता है, मतलब कुछ भगवान को रिझाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि भगवान मैं आपकी एक विनती करता हूँ, मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ आकाश गंगा के जल से और गौ माता के दूध से, मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। बोले ठीक है कर दो, अभी क्या है ना, अभी पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है बेचारा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, वरुण देव के राज्य से, वरुण लोक से उनका एक सिंहासन है वर्ल्ड फेमस, उसको मंगाया, बोला ले आओ भगवान को बिठाने के लिए। वायुदेव के लोक में एक छतरी है, बड़ी फेमस है वो, वायुदेव को आदेश किया छतरी ले आओ छत्र के रूप पकड़ने के लिए। ऐसे सभी देवताओं के लोगों से बेस्ट बेस्ट चीजें मंगाई उन्होंने। ऐरावत को भेजा आकाश गंगा का 5 शुंड में पानी भर के लेके आया, ऐरावत कुंड बना दिया। सुरभि को लाया भगवान के ऊपर खड़ा किया और भगवान का आकाश गंगा के जल से, अभी कितना वर्णन करे थे मैं बहुत कम है, इतना भव्य अभिषेक किया उनका। तो वो दूध और जल का अभिषेक हुआ आकाश गंगा का, तो उसका जो जल नीचे आया ना उसको कहते हैं चरणामृत, वो इकट्ठा हुआ उसका बना गोविंद कुंड। तो भाई आप जाएंगे ना वहां पर गोविंद कुंड भी है, वो भगवान का चरणामृत है। सभी देवताओं ने बड़े ऐश्वर्य के साथ भगवान का अभिषेक किया और वो गोविंद कुंड तैयार हो गया। आज भी हम लोग उसको स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, वो भगवान का चरणामृत है। भगवान के चरणामृत को स्पर्श करते ही सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो गोविंद कुंड का भगवान ने निर्माण करके हम जैसे लोगों के लिए वो छोड़ दिया इधर ही। उसके बाद सब देवता लोग चले गए, अपना अपना सब सामान छोड़ के चले गए। कुछ ग्वाल बाल छुप छुप के देख रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, देख रहे हैं इतने बड़े बड़े तेज वाले लोग, इतने बड़े बड़े मुकुट पहन के, इतना प्रकाश शरीर से आ रहा है, उन्होंने इतना भव्य अभिषेक किया। तो ग्वाल बालों के मन में आया कि हमारा भी एक अभिषेक होना चाहिए। सब देवता चले गए, फिर ये बाहर आ गए छुपे हुए और कृष्ण को कहते कन्हैया श्याम सुंदर हम भी आपका अभिषेक करना चाहते। कहते भगवान कहते करो, तो बेचारे सिंपल गांव वाले है ना, वो दो पत्थर रखते हैं ऐसे, एक पत्थर ऐसा रखते हैं कैसा रखते हैं, बोला बैठ जाओ ये हमारा सिंहासन। और अपना अपना दूध लेके आते हैं, अपना अपना पानी लेके आते हैं और अभिषेक करते प्रेम से। भगवान ने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में स्पष्ट शब्द में कहा है कि जितना आनंद मुझे ग्वाल बालों के अभिषेक में हुआ उतना मुझे देवताओं के अभिषेक में भी नहीं हुआ। देवताओं के अभिषेक इनके अभिषेक के सामने मुझे तुच्छ लगता है, क्योंकि वो ऐश्वर्य से भरा हुआ था, ये प्रेम से भरा हुआ था। इसमें ऐश्वर्य कम था प्रेम ज्यादा था। भगवान किसके भूखे होते हैं, ऐश्वर्य के होते हैं क्या? नहीं, भगवान को ऐश्वर्य प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है प्रभावित ऐश्वर्य? क्योंकि ऐश्वर्य उनका ही दिया होता है, उनके हुए दिए हुए वस्तु पर आप गर्व करेंगे तो कैसे उसको प्रभावित करेंगे आप? आपका खुद का कुछ होगा तो ही वो आनंद आएगा उनको। जब बच्चा अभी आपका बच्चा आपको बर्थडे के दिन आपसे ही पैसा लेके इकट्ठा करके वो 5 रुपए का चॉकलेट लेके आएगा, बोले पप्पा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो पप्पा क्या बोलेगा? उसमें क्या बड़ी बात है, मेरे ही पैसे है, उसको ही तूने संभाल के रखे थे, मेरे पैसे से जाके लेके आए, मैंने दुकान दिखाया था आपको, उधर से कभी चॉकलेट भर दिया था आपको। पापा ऐसे नहीं बोलता है, पापा को चॉकलेट में इंटरेस्ट नहीं है। जिस प्रेम के साथ योजना बना के बेटे ने जाकर पैसा इकट्ठा करके रख के संभाल के दिन याद करके चॉकलेट लेके आकर प्रेम से उस दिन को याद करके हैप्पी बर्थडे पप्पा कहा है, वो प्रेम से आप प्रभावित हो। और वो प्रेम बालक का है, खुद का है, वो आपके 5 रुपए वाला नहीं है वो। तो वैसे ग्वाल बालों ने प्रेम से अभिषेक किया इसलिए भगवान ने ज्यादा पसंद किया उसको। इसलिए भगवान को अपने रुपये से और पद से और पोजिशन से प्रभावित करने का प्रयास मत करो, भगवान को प्रेम से प्रभावित करने का प्रयास करो। जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपके दिल का स्वयं क्या निज धन है उसका आपका, तो उसके बाद में फिर इंद्र भगवान को माफ किया है। तो ये लीला है उनकी। हाँ भगवान बताते हैं कि किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, और खास करके भक्त अहंकार करता है तो भगवान चकनाचूर कर देते हैं उसको, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। अगर भक्त के अंदर अहंकार पैदा होता है तो उस अहंकार को नष्ट करना भगवान की कृपा है, क्योंकि अहंकार ही उसको जीवन सिद्धि के मार्ग में बाधा करने वाला है। इसलिए पहले वो अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं, चाहे भक्तों को कितना भी कष्ट हो अहंकार को क्रश करते समय, लेकिन भगवान बिना हिचकिचाहट के भक्त का अहंकार चूर कर देते हैं। समझो आपके बच्चे को कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर बोल रहे भी इसका तो अभी गोली से नहीं होगा, उल्टी कर रहा है, उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो वे कष्ट होगा कि नहीं? तो नहीं, बच्चा तो बहुत शरारती है। तो आप 4 लोगों को लेके आएंगे, 2 भाइयों को लेके आएंगे, 2 वार्ड बॉय को लेके आएंगे, मतलब पकड़ो इसको मारो इंजेक्शन इसको। तो बच्चा बोल रहा है कितने दुष्ट हो पापा आप, कैसा कार्य कर रहे हो, इतने महान राक्षसों को मेरे ऊपर लगा रहे हो और कुछ डाल रहे हो चुभा रहे हो सुई के अंदर से, ये कैसे पिताजी है, कैसे माताजी है, ये माताजी है, पिताजी है, तो दुष्ट हमारे दुश्मन है ये। लेकिन फिर भी बालक लात मारता है, कुछ करता है, उसको पकड़ के सुई लगा देते हैं। क्या कारण है उसका? बच्चे पर प्रेम नहीं करते, वो बच्चों को कष्ट देना चाहते हैं, ऐसा है ना? नहीं, बच्चे के हित में इंजेक्शन है वो, इसलिए वो कुछ भी करेंगे, बच्चे को बांध देंगे दोरी से, लेकिन नीचे लगा देंगे। उसी तरह से हमका हमारा जब अहंकार नष्ट करने का समय आता है, तो भगवान ऐसे ही पकड़ के हमको बांध के अहंकार चकनाचूर कर देते हैं। उसी में हित है आपका, तो इंजेक्शन लग जाता है, उसका बच्चा ठीक हो जाता है, उसको बाद में फिर चार लोगों को आके पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरह से भगवान हमारी जिंदगी में कृपा पूर्ण कार्य करते रहते हैं। तो ऐसा ये गिरिराज गोवर्धन है, इसके बारे में क्या क्या कहें आपको? ये गिरिराज गोवर्धन साक्षात कृष्ण भी है, साक्षात कृष्ण का सेवक भी है। हरिदास वर्य कहा गया इसको, हरिदास यानी भगवान का दास, वर्य यानी का सर्वश्रेष्ठ, है ना? कवि वर्य मतलब जो कवि भी है, कवियों में श्रेष्ठ है, वैसे हरिदासों में श्रेष्ठ है। ये कौन बोल रहे हैं? रस्ते पर चलने वाला बालक नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान की सबसे बड़ी भक्त कौन है? वो है गोपियां। पूरे इतिहास में उनका गौरव है कि इतनी बड़ी भक्त भगवान के कोई नहीं हुई है जैसे गोपियां हुई है। तो वो गोपियों की नायिका कौन है? राधा रानी है। तो ये नायिका के नायिका जो है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्त है, वो कह रही है कि ये गिरिराज गोवर्धन जो है वो हरिदास वर्य है। जब कोई महान व्यक्ति आपका गौरव करता है तो वास्तविक हम महान होते हैं। जब कोई छोटा आदमी बोलता है तो कोई कौन पूछता है उसको, लेकिन जब महान व्यक्ति बोलता है कि ये बहुत महान है, वैसे गोपियां उनको हरिदास वर्य के नाम से पुकारती है। और साक्षात भक्ति को देने वाले हैं ये, इनकी शरण में जो जाएगा वो कृष्ण की भक्ति और प्रेम प्राप्त करेगा। और इनकी परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? चरणों की पूजा। जब किसी व्यक्ति की हम परिक्रमा करते हैं मतलब उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। तो गिरिराज की जब परिक्रमा लगाते हैं तो चरणों की पूजा की जा रही है उनके, और परिक्रमा करते समय आंखों से दर्शन करते जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के भगवान भगवान के चरणों की भक्ति हमको प्राप्त हो। ऐसे गोवर्धन भय है कि इनके इर्द गिर्द, इनके अंदर, इनके गुफाओं के अंदर भगवान ने बहुत ही उत्कट लीलाओं को संपन्न किया है। भगवान के लीलाओं को संपन्न करने का भगवान का सबसे फेवरेट स्थल है, इसलिए गिरिराज का होना बहुत ही वृंदावन के लिए महत्वपूर्ण है। और गिरिराज का सान्निध्य प्राप्त होने से भक्त लोग है ना वो प्रार्थना करते हैं, निज निकट निवास गोवर्धन, निज निकट निहास देही त्वम गोवर्धन तोम, ऐसे बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है कि हे गोवर्धन, कब आप हमें आपके निकट निवास देंगे? निज निकट निवास, ऐसा कुछ श्लोक है उसका, निज देही गोवर्धन त्वम, कब आप हमें आपके निकट निवास देंगे? तो सब भक्तों की कामना होती है कि कहीं जीवन में कहीं आपके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हो, जब आपका भजन हम कर सकते हैं। तो वही गोवर्धन हमारे भक्त गुरुदेव की कृपा से अभी गोवर्धन इको विलेज में प्रकट हो गया है। आप कभी वृंदावन गोवर्धन गए होंगे, आपको पता चलेगा कि साक्षात है ये, यमुना जी प्रकट किया है, गोवर्धन के स्थान प्रकट किए हैं। तभी टाइम तो हो गया लेकिन संक्षेप में बताऊंगा कि सब में उसके अंदर एक, ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी में भगवान को मथुरा मंडल बहुत प्रिय है, मथुरा मंडल में भगवान को 108 वन बहुत प्रिय है, उन 108 वन में भगवान को 12 वन बहुत प्रिय है, उस 12 वन में वृंदावन बहुत प्रिय है, उस वृंदावन में भगवान को गोवर्धन बहुत प्रिय है, क्योंकि गोवर्धन के अंदर ही, वृंदावन के अंदर ही गोवर्धन आता है। उस वृंदावन के अंदर जो गोवर्धन है वो वृंदावन से भी अधिक प्रिय है, और गोवर्धन के अंदर भी उनको राधा कुंड और श्याम कुंड सबसे प्रिय है, वो सर्वोत्तम लीला स्थली है भगवान की। अरिष्टार्थ का भगवान ने वध किया जो बैल के रूप में था,